शांति। विश्व में प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी का हम सब एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी, आप ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में सीनियर राजयोग टीचर हैं, मैनेजमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आध्यात्मिक परामर्शकर्ता और लेखिका भी हैं। 1974 में अफ्रीका जाम्बिया से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। 1980 में संपूर्ण रूप से आप समर्पित हो गए। प्रारंभिक सेवाएं मुंबई हैदराबाद में आपने की। 1985 में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल यूथ ईयर के दौरान भारत एकता युवा मार्च में सक्रिय पार्टिसिपेट आपने किया। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता के जीवन मूल्यों पर शोध और प्रेरक व्याख्यानों के लिए दीदी आप प्रसिद्ध हैं। भारत और विदेश में तनाव मुक्ति, मूल्य आधारित जीवन, व्यक्तित्व विकास पर आपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम और बहुत प्रवचन भी किए हैं। 2012-2019 में आपको अवार्ड्स भी प्राप्त हुए। पीस ऑफ माइंड चैनल में हम आपके कार्यक्रम सभी भाई बहन लाभ लेते रहते हैं। बिहार विधानसभा में आपको तनाव मुक्ति कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी दिया गया। विक्रमशिला विद्यापीठ से बिहार बांगलपुर में ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री से भी आपको सम्मानित किया गया है। आप पॉलिटिकल विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। राजयोग शिविर, राजयोग कमेंट्री भी हिंदी भाषा में, इंग्लिश में और गुजराती भाषा में आपका सभी प्रोग्राम सोशल मीडिया के द्वारा हम सब लाभ लेते हैं। SML कोर्स अर्थात सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप कोर्स के प्रणेता आप हैं। नागा अर्जुन फर्टिलाइजर में फर्स्ट SML कोर्स भी आपने ही स्टार्ट किया था। आप में अनेक गुण और विशेषताएं हम आपके बोल से, व्यवहार से अनुभव करते हैं। दीदी, आप हसमुख हैं, नम्रचित हैं, रहम दिल हैं, मधुर भाषी हैं। सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, कल्याण की भावनाएं लिए हुए हैं। आज दीदी का विषय है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय।
ओम शांति। दीदी ने बड़ा लंबा परिचय दे दिया। बाबा की विशेषताएं बाबा के कार्य में यूज हो रही है, उससे और ज्यादा क्या होगा। विशेषता भरने वाला बाबा, कार्य कराने वाला बाबा, तो महिमा बाबा की। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा करण करावनहार स्मृति में रहे, कराने वाला करा रहा है। बाकी आज का जो विषय है समय के हिसाब से बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसे हालातों के बीच में और आगे भी बिगड़ना ही है, तो ऐसे समय पर हमें अपनी स्वस्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है। भीतर से जितना हम सशक्त होंगे उतनी बाहर की हालतें भी हमें तोड़ नहीं पाएंगी। लेकिन अगर भीतर से हम कमजोर रहे तो बाहर की हालतें हावी हो जाएगी, और जब वो मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाए, मन बुद्धि दिल के ऊपर, तो अनेक प्रकार के जो नहीं इच्छा रखे ऐसे भी स्थितियां पैदा हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं पर स्थिति वो पर है और स्वस्थिति मेरी अपनी है। तो पर स्थिति जो पर है वो मेरी अपनी स्थिति के ऊपर अपना प्रभाव न डाले। लेकिन प्रभाव न डाले उसके लिए हमें किन बातों का अटेंशन रखना है ताकि हम अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बनाए। तो सबसे पहली बात जो है, ज्ञान और योग का फाउंडेशन हम मजबूत करें। जितना हमारा ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत होगा, यानी बाबा ने हर बात की समझ यथार्थ रूप में दी है, और उसमें भी सबसे बड़ी समझ की जो बात बाबा ने दी है वो है ड्रामा की समझ की बात, कि ड्रामा के ढाल को हम जरूर यूज करें। ड्रामा का ज्ञान खाली बुद्धि तक न हो, लेकिन जब उसको व्यवहारिक स्तर पर ले आए, खास करके जब कोई ना कोई आए दिन परिस्थितियां तो आती रहती है, कभी छोटी कभी बड़ी आती है, लेकिन ये परिस्थिति भी ब्राह्मण जीवन में इसीलिए आती है ताकि ये एक रिहर्सल है हमारे लिए फाइनल पेपर का। और ये रिहर्सल में जितना हम पास होते जाएंगे, प्रतिदिन अपने आप को चेक करेंगे कि हम पास हुए या फेल हुए, जितनी बार आप पास होते जाएंगे वो संस्कार हमारे मजबूत होते जाएंगे। तो फिर बाहर की बातें मन के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, दिल को कमजोर नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं भीतर से स्वयं को ज्ञान योग से मजबूत करो। साथ ही साथ चारों ही सब्जेक्ट का वैसे तो रोल है, धारणा भी हमें अंदर से दृढ़ शक्ति देती है। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर उपवास कर लेता है, कोई बात का संयम ले लेता है, तो वो संयम उसको शक्ति प्रदान जरूर करता है, वो भीतर से मजबूत होने लगता है। ठीक इसी तरह बाबा ने जो इतनी धारणाएं हमसे कराई है, ये धारणाओं के पीछे भाव क्या है कि जितना हम अपने जीवन के अंदर संयम रखते हैं उतनी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाती है। तो बाबा के हर धारणा में शक्ति है, ताकत है, ईश्वरीय शक्ति समाई हुई है उसके अंदर। इसीलिए ये धारणाओं के सब्जेक्ट को भी हमें पावरफुल बनाना है। छोटे से छोटी धारणा भी जो बाबा ने बताई है, आगे परिस्थिति के समय वही काम आएगी। और दूसरे लोगों को टूटते हुए देखेंगे, लेकिन हम जैसे सशक्त अचल अडोल स्थिति में अपने आप को पाएंगे। इसलिए ये धारणाओं में भी, ये संयम में भी बहुत ताकत समाई हुई है। और चौथा जो कहा, सेवा में, सेवा में दुआओं की शक्ति, पुण्य का खाता हमारा जमा होने के कारण वो पुण्य की शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। तो दुआओं की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म किया तो पुण्य की शक्ति, दोनों ही जैसे हमारे जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट हमें बाबा ने इसीलिए दिए हैं इस ब्राह्मण जीवन में, ताकि हम अंदर से अपने आप को सशक्त कर ले, है ना? जैसे वो दृष्टांत देते हैं कि कुम्हार जब कोई घड़ा बनाता है तो एक हाथ भीतर डालता है, एक हाथ ऊपर से थप 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 करता है, तो उसमें ताकत भी आती है और भीतर से जो दिया सपोर्ट दिया। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हमें भीतर से सपोर्ट भी देते हैं, परिस्थितियों की थपेड़े भले लगे हमें, लेकिन अंदर से हम सुरक्षित हो जाते हैं। कोई भी, दुनिया में भी कहा जाता है कि कोई भी नियम जो है, वह नियम जब व्यक्ति उसको तोड़ता है तो नियम उसको बचाता नहीं, लेकिन जो नियम की प्रैक्टिस अपने जीवन में ले आता है वो नियम हर समय उसकी सुरक्षा करने के लिए जैसे हाजिर है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के अंदर इतना पावरफुल बनना है तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट से हमें आंतरिक पावर मिलती है, जो पावर हमें आगे बढ़ाती है। तो पहला, तो सबसे पहला, परिस्थितियों में स्वस्थिति को पावरफुल बनाने के लिए ये चारों सब्जेक्ट हमारे बहुत एक्यूरेट हो। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं कि दुनिया के अंदर भी कोई अगर व्यक्ति कमजोर होता है तो खास उसके लिए फिजियोथेरेपी वाले आते हैं या एक्सरसाइज कराने वाले आते हैं, प्राणायाम कराने वाले आते हैं। वो उसको जब कराते हैं तो धीरे 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 उसके अंदर ताकत आने लगती है। ठीक इसी तरह बाबा ने भी हमें विभिन्न ड्रिल सिखाई है। ये ड्रिल किस लिए है? ये ड्रिल हमें भीतर से सशक्त करती है, अंदर से मजबूत करती है, ताकि हर परिस्थिति के ऊपर सहज हम अपनी स्वस्थिति का प्रभाव डालें और उसमें विजयी हो जाए। तो ड्रिल कौन सी करनी है? बाबा हमेशा कहते, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही चक्रवर्ती राजा भी बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनेंगे? तो बाबा ने पांच स्वरूप की ड्रिल बताई है कि कैसे पांच स्वरूप की ड्रिल हमें करनी है। बाबा ने खुद कराई है, जैसे कमेंट्री देते हुए, कि कैसे हम परमधाम से नीचे उतरते हैं, सतयुग त्रेता में अपना पाठ बजाते हैं, फिर धीरे धीरे हम द्वापर में आते हैं तो हमारे पूज्य स्वरूप का पाठ होता है, हम भले पुजारी बन जाते हैं लेकिन फिर भी इतने गिरते नहीं हैं, लेकिन फिर जैसे कलयुग आ जाता है तो वहां बाबा मिलता है कलयुग के अंत में, तो संगम युग का पाठ, हम सभी संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और वही ब्राह्मणों को फिर लक्ष्य मिलता है कि क्या बनना है, फरिश्ता बनना है। संगम युग का फाइनल पिक्चर कहो, फाइनल हमारा स्वरूप कहो, कौन सा है? फरिश्ता स्वरूप। किसी ने मुझे पूछा कि बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, तो देवता तो मुख हो गया, ब्राह्मण चोटी हो गई, तो नीचे जाने का लक्ष्य क्यों दिया बाबा ने? लक्ष्य तो हमेशा ऊपर का होता है ना, ये नीचे उतरने का लक्ष्य क्यों दिया बाबा ने? क्या कहेंगे ना? हा? 84 की सीढ़ी नीचे उतरते हैं, इसलिए लक्ष्य नीचे का दे दिया बाबा ने। चक्र फिरता ही रहता है, ऑटोमेटिक है, लेकिन लक्ष्य तो ऊंचा होना चाहिए ना। लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, नीचे उतरने का लक्ष्य क्यों दिया? किसी विदेशी भाई ने यहाँ आए थे तो मुझे ये प्रश्न पूछा कि एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि हम ब्राह्मणों को बाबा नीचे उतरने का लक्ष्य क्यों देते, ऊपर चढ़ना चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, तो इसलिए ब्राह्मणों को नीचे उतरने का लक्ष्य देंगे। मैंने यही कहा कि बाबा ने कभी नीचे उतरने का लक्ष्य नहीं दिया है। आपने अगर मुरली ध्यान से सुनी हो तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। मनुष्य पैर है, पैरों को ऊंचा लक्ष्य दिया, मनुष्य से देवता बनना है। लेकिन जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तब बाबा ने लक्ष्य हमें दे दिया बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता ब्राह्मणों से भी ऊंचा है, तो हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, हमारा लक्ष्य देवता बनना नहीं है। वो जब मनुष्य थे तब देवता बनने का लक्ष्य था, लेकिन ब्राह्मण बनने का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनो, बाप समान बनो, ये लक्ष्य दिया है बाबा ने हम बच्चों को, है ना? तो कभी भी आप मुरली में ये नहीं सुनेंगे कि ब्राह्मण सो देवता बनना है, नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता और मनुष्य से देवता, समझा? बाबा कभी नीचे उतरने का लक्ष्य नहीं देते हैं, और ऊपर, है ना? फरिश्ता, फरिश्ता से निराकारी दुनिया में जाना है हमें, तो निराकारी स्वरूप का लक्ष्य मिला। फिर जब निराकारी बन जाते हैं फिर अपने आप नीचे उतरना शुरू होते हैं, वो लक्ष्य नहीं, देवताओं का ये लक्ष्य नहीं है नीचे उतरने का। इसलिए बाबा कहते हैं उनको तो ज्ञान भी नहीं है, ये ज्ञान भी इस समय ही हमें मिलता है। तो हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो निराकारी स्थिति, परम धाम में जाना है सबसे पहले, उसका लक्ष्य दिया, उसके बाद जो है भले अपने आप नीचे उतरने लगे हैं। तो नीचे उतरने का लक्ष्य कभी नहीं दिया जाता है, है ना? अंतिम स्वरूप तो बिंदु स्वरूप है, तो इसीलिए अपने आप को सशक्त करना है, तो ये ड्रिल बार बार करनी है, 5 स्वरूप वाली ड्रिल। बाबा ने कहा कम से कम 8 बार तो करो, हाँ, बाबा ने जब कहा था ये बात कि कम से कम 8 बार तो करो, और जो स्वदर्शन चक्रधारी बनेगा वो चक्रवर्ती बनेगा, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते स्वदर्शन चक्र घुमाओ 8 बार तो कम से कम,
निराकारी देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और फिर निराकारी स्वरूप, ये बार बार घुमाओ अंदर में। जितनी बार उसको घुमाएंगे अंदर में ताकत आती जाएगी, आत्मा पावन होती जाएगी। विकर्म, बाबा कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से विकर्म विनाश होते हैं। कहा ना शास्त्रों में भी, चक्र घुमाया तो गला कट गया, असुरों का गला कटा। वास्तव में असुर कौन? यही जो बुराइयां हैं उसका गला कट जाता है। क्योंकि जब हम ये चिंतन में ले आते हैं तो व्यर्थ चिंतन नहीं चलता है, नेगेटिव चिंतन नहीं चलता है। खाली मन शैतान का घर होता है, तो खाली मन रखेंगे तो चलेगा। तो इसीलिए ये ड्रिल करते जाओ, जितनी बार अधिक ड्रिल होगी, 8 से अधिक बार भी होगी, कोई अर्जा नहीं, उतना अंदर से ताकत वाले बनते जाएंगे। तो अंतिम दृश्य के हर सीन को देखने की शक्ति आ जाएंगी, हर परिस्थिति के ऊपर विजयी हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा है कि जो बाबा ने इतने स्वमान दिए हैं, स्वमान धारी बनो, है ना। दुनिया में भी कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, है ना। तब कहते कमजोर विचार मन के अंदर नहीं लाओ, शक्तिशाली विचार लाओ। तो जो बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिए हैं, वो स्वमान का स्वरूप बन करके महसूस करो, मैं वो हूं। तब माया पास में नहीं आएगी, माया पास नहीं आएगी। इसलिए स्वमान धारी बनो। शुरू शुरू में दादियां बताती थी कि प्रकाशमणि दादी कहती थी, हम बहने ज्यादा थी, भाई तो इतने थे नहीं यज्ञ के अंदर, तो रात का पहरा भी हम लोगों को ही देना होता था। तो कईयों को डर लगता था, रात्रि के समय एकांत हो जाता था, अंधेरा होता था, तो कई बहनों को डर लगता था। तो बाबा ने हम सबको स्वमान दिया था, ये सोचो मैं चतुर्भुज हूं, चतुर्भुज हूं, ये स्वमान धारण करो। दो भुजा नर की तो दो भुजा नारी की, है ना। तो जब चतुर्भुज स्वरूप में अपने आप को देखेंगे तो दोनों की क्वालिटी अपने अंदर आने लगेगी, तो भय नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब रात्रि को बहने पहरा देती थी तो यही सोचती थी, मैं चतुर्भुज स्वरूप हूं, मैं चतुर्भुज हूं। और सचमुच इस स्वरूप में जब पहरा देती थी तो कहा कोई नहीं आता था, तो आता ही नहीं था। पता नहीं बाबा क्या अनुभव कराता होगा। कहा उस समय जो है जहां हम पहरा देते थे तो जैसे सारी बाउंड्री लाइट का घेराव में आ जाती थी, लाइट के घेराव में आ जाती थी। तो उस लाइट के घेराव में होने कारण हम इतना सुरक्षित महसूस करते थे, कभी कोई भी परिस्थिति हमारे लिए आई नहीं। भले पाकिस्तान में थे, पार्टीशन हो रहा था, मारकाट चल रही थी सब जगह, लेकिन बाबा के बच्चे बिल्ली के पुंगरे जैसे सेफ थे। कैसे सेफ हुए? ये स्वमान। अभी एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि हम लोग ने भी अभ्यास किया, रहते हैं ऐसे एरिया में जहां नक्सलवादी है, तो वहां पर रह करके हमने ये अभ्यास किया, हम चतुर्भुज हैं, हम चतुर्भुज हैं। तो कहा कि कभी भी रात्रि के समय रिक्शा वाले, क्योंकि सामने एक हॉस्पिटल थी तो रिक्शा वाले पेशेंट को लेकर के आते थे, तो रिक्शा वाले बात करते थे आपस में कि यहां एक बूढ़ा व्यक्ति पहरा देता है, कौन है वो, है ना। और इतना लाइट 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 होता था रात्रि के समय में, और वो पहरा देता है और बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आती है। तो बहन फिर बाबा का फोटो दिखा कर, ये था क्या वो बुड्ढा, हाँ बोले यही था, उनको साक्षात्कार होता था। कहा जब हम पेशेंट को लेकर के आते थे तो पेशेंट को छोड़ करके फिर हम यहाँ रिक्शा खड़ी करते थे कोई पैसेंजर मिल जाए, तो जब हमारी नजर आपके सेंटर पर जाती थी तो एक बूढ़ा बाबा जो है वो पहरा दे करके ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे चलता रहता था। और कभी हम लोगों की तो क्या, लेकिन दूसरे भी नक्सल लोग जो थे वो भी आकर के अटैक नहीं कर सकते थे। तो स्वस्थिति को पावरफुल बनाने के लिए श्रेष्ठ स्वमान, बाबा ने कितने स्वमान दिए हैं, कितने स्वमान दिए पता है, कितने स्वमान दिए हैं, अनगिनत, फिर भी गिनती तो होगी ना। एक माता ने 86 इयर्स की है, सारे स्वमान बैठ करके लिखे, लिस्ट निकाली उसने, जितने उसको याद आए, एक महीना लगा एक एक स्वमान लिखने, और उसने कहा 1700 स्वमान मिले हैं हमें, 1700, 1700 स्वमान उस माता ने विचार सागर मंथन करके निकाला, सोचो। और एक एक स्वमान को धारण करो तो कितनी शक्ति आ जाएंगी अंदर में, कमजोर पड़ेंगे नहीं, कोई परिस्थिति हमारे तरफ आ नहीं सकती है, इतनी हमारी स्वस्थिति पावरफुल हो जाएगी। तो सोचो बाबा ने ऐसे ही थोड़ी ये स्वमान दिए हैं, मैं चतुर्भुज हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये स्वमान ऐसे ही थोड़े दिए हैं, इसको खाली रिपीट नहीं करना है लेकिन फील करना है, स्वयं को उस स्वरूप में जैसे ले आओ, और स्वरूप में ले आकर के विश्व कल्याण करना है, सर्व आत्माओं को शक्ति का दान देना है, अनुभव करो उसका, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अपनी स्वस्थिति इतनी पावरफुल हो जाएगी, कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। बाबा ने कभी भी, दादियों ने भी, हमने तो दादियों को देखा, कभी भी कोई भी यज्ञ के ऊपर कोई अगर ऐसी परिस्थिति का प्रभाव भी अगर आया तो दादी कहते हैं अपना श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर के योग करो। और आप देखते थे, हम देखते थे, अनुभव करते थे कि वो परिस्थिति जैसे गायब हो जाती थी, गायब हो जाती थी। बाबा के घर के तरफ अगर कदम भी वो परिस्थिति ने बढ़ाए तो पीछे हट, है ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स दादियां सुनाती थी, कभी सेवा में कोई बात आ जाती थी, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी, सारा तैयार हो गया, बीच में नहीं सुनाया था कि जब रामलीला मैदान में सारी तैयारी हो गई थी मेले की, और फिर पता चला रशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है और उनको यही ग्राउंड में प्रोग्राम करना है, ये ग्राउंड खाली करो, इतनी बड़ी परिस्थिति। और दादी कहती है श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ, है ना, लाइट की शक्ति, लाइट और माइट की शक्ति देना, मैं लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप हूं। तो जब ऐसे एक ग्रुप योग करने बैठते थे और एक ग्रुप को दादी डायरेक्शन देती थी, आप लोग दिन और रात सेवा करो, रात को भी सेवा करो, मना पंडाल खड़ा कर दो। और सचमुच जब उन्होंने पंडाल खड़ा कर दिया, दुर्गा की मूर्ति ओपनिंग के लिए रख दिया, दादी के कहने के हिसाब बाबा की टचिंग होती थी। दुर्गा की मूर्ति अभी दूसरे दिन ही जब वहां से भाई आए देखने के लिए कि भाई ये लोग ने खाली किया कि नहीं किया, देखने के लिए आए, सामने दुर्गा की मूर्ति देख करके वो चले गए। कहा वहां तो दुर्गा माँ स्थापित हो गई है, अगर हमने खाली करवाया उखड़वाया तो हमारा नुकसान होगा, हमारे सामने बहुत बड़ा पेपर आएगा फिर, क्योंकि दुर्गा माँ फिर माफ नहीं करेगी, है ना? तो देखो कैसे होता है। एक अपनी बहन थी तो उसके फादर ने, समर्पित बहन, उसके फादर ने किसी से उधारी लिया होगा, अब वो उधारी चुका नहीं पाया तो वो लोग आए, गुंडे लेकर के आए, कहा तुम हमको चुकाता है या नहीं चुकाता है? तो कहा भाई मेरे पास है नहीं, मैं कैसे चुकाऊं? तो कहा उसकी लड़की को उठा के ले जाओ। तो बोले लड़की तो सेंटर पर रहती है, यहां रहती नहीं, वो तो ब्रह्मा कुमारी है। तो कोई बात नहीं, वहां सेंटर उड़ाड़ो, बम डाल करके उड़ा दो और उस लड़की को ले आओ। तो उन्होंने चिट्ठी भेजना चालू किया सेंटर पर कि अगर आप हमारे हवाले नहीं करेंगे इस बहन को तो हम आपका सेंटर बम से उड़ा देंगे। सत्य घटना सुना रही हूं। तो फिर जो है बहन जी कहे ऐसे कैसे हम किसी के हाथ में, ये लड़का बाबा की बच्ची है, समर्पित है, हम लोग जिम्मेवार है, ऐसे कैसे हम दे दे रहे? तो जो है वो बहन कहे, वो जो बहन थी वो कहे दीदी आप मेरे को छुट्टी दो, बाबा मेरे साथ है ना, कोई कुछ नहीं कर, लेकिन कहीं उड़ा दिया तो सेंटर, अब मुझे छुट्टी तो दो, मैं जाती हूं। कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे छुट्टी देंगे, बाबा को हम क्या जवाब देंगे फिर? तो कहा नहीं आप छुट्टी दो मेरे को, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है बाबा मेरे साथ है। कहा ठीक है देखो। तो उसने फिर कहा मैं आ रही हूं, कहां आना है बताओ। तो उन्होंने भेजा कि भाई फलाने जगह पर आना है, एक वृक्ष होगा वहां आकर के आप खड़े रहना, वहां से हम आपको किडनैप कर लेंगे। अब जो है वो बहन तो जाकर के बैठ गई, शाम को 5 बजे बैठ गई, टाइम दिया था उन्होंने तो बैठ गई, और बस एक ही उसने कहा मैंने स्वमान लिया, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं दुर्गा माँ हूं, बस ये स्वमान लेकर के वो बैठ गई। अब वो आए होंगे लेने के लिए तो, है ना, उस वृक्ष के नीचे बैठ गई ये श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर के, मैं शिव शक्ति हूं, मैं दुर्गा माँ हूं। टाइम निकलता गया, दूसरे दिन सुबह 4 बज गया, कोई आया ही नहीं उसको लेने के लिए, है ना? जब सुबह 7 बजे तक भी कोई नहीं आया, है ना, वो एक ही स्वमान जैसे अजपा जाप, मैं शिव शक्ति हूं, मैं दुर्गा माँ हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं दुर्गा माँ हूं। स्वमान इतना पावरफुल रीति से, और महसूस करती थी मैं शिव शक्ति हूं, शिव बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है और मैं शिव शक्ति हूं। फिर 7 बजे उन्होंने अनाउंस किया, वो लोगों ने ही, बहन जी हम हाथ जोड़ते हैं, आप भले चले जाओ, आप कोई देवी हो, हम आपको कुछ नहीं कर सकते, ये स्वमान की शक्ति है कि स्वमान से हर परिस्थिति के ऊपर विजयी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम परिस्थिति का स्वरूप बन जाते हैं, स्वस्थिति छूट जाती है, स्वमान छूट जाता है, और हम है कौन, हम है कौन, ये भूल जाते हैं, साधारण बन जाते हैं। अब साधारण स्वस्थिति होगी तो परिस्थिति तो हावी होगी या नहीं होगी? तो इसलिए पहले तो हमारा चार सब्जेक्ट ठीक करना चाहिए, दूसरा ड्रिल करते जाओ, आत्मा को इतना ताकत वाला बना दो, है ना, ड्रिल करो, खूब ड्रिल करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा भी एकदम पावन हो जाएंगे, और तीसरा श्रेष्ठ स्वमान धारण करके उस स्वरूप में सारा दिन अपने आप को अनुभव करो। कोई परिस्थिति आपके पास आ नहीं सकती है, गारंटी है। बाबा आपके द्वारा उस स्वरूप का साक्षात्कार सामने वाले को कराएगा, है ना, सामने वाले को कराएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते थे कि कोई मारने आया था, ब्रह्मा बाबा तो हमेशा श्रेष्ठ स्वमान में अपने आप को स्थित करते थे, मैं इष्ट हूं, और सचमुच उसको अपना इष्ट दिखाई देता था बाबा में। जब बाबा उसी स्वमान को लेकर बैठते थे कि मैं इनका इष्ट हूं, अब वो सरदार था तो उसको गुरु नानक देव का साक्षात्कार होने लगा, सुनते ना हिस्ट्री में। तो स्वमान में स्थित होना इतना पावरफुल अपने आप को बनाते हैं, जो हर परिस्थिति दूर से ही क्या करेगी, छुट्टी ले लेंगे। चौथी बात, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय पाने के लिए कंबाइंड हो जाओ। बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड स्वरूप अनुभव करो, बाप दादा और मैं और कोई नहीं, या तो शिव बाबा और मैं, तीसरा न कोई, एक बाबा दूजा न कोई। तो जब आप कंबाइंड हो जाएंगे तो जैसे डबल पावर हो गई, तो डबल पावर के आगे कोई परिस्थिति आएगी क्या? आप बाप दादा के साथ कंबाइंड हो गए, परिस्थिति में दम है, वो भी कलियुगी परिस्थिति में दम है कि जो आपके कंबाइंड स्वरूप के आगे टिक सके? टिक ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। तो इसीलिए कंबाइंड पने का अनुभव करो। मैं एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, मधुबन में तो हर कोई आता है तो कोई ऐसी खास बात होती है तो अपना अनुभव सुनाते। कहा कि हमारे बड़े सेंटर पर मीटिंग रखी थी तो सभी बहनों को बुलाया था, तो हम भी ट्रेन में आ रहे थे, मीटिंग में पहुंचना था हमको भी। तो कहा बड़े सेंटर पर जब मीटिंग थी तो हम ट्रेन में, तो रात की ट्रेन लिया। अब सुबह अमृत वेले हम उठ करके योग करने बैठे, बाबा को याद कर रहे थे। तो बाबा को जब याद कर रहे थे कि तो बाबा जैसे मैं और मेरा बाबा, बस इसी कंबाइंड स्वरूप में हम जैसे बाबा को याद कर रहे थे ट्रेन में। तो कहा अचानक ट्रेन रुकी, क्यों रुकी पता नहीं, है ना, लेकिन ट्रेन रुकी। हम अपने मस्ती में बैठे थे, योग कर रहे थे, बाबा के साथ मिलन का अनुभव कर रहे थे, तो ट्रेन रुकी, फिर पता चला, फिर चालू हो गई तो इतनी फास्ट जाने लगी, फिर पता चला कि ट्रेन को रुकाने वाले कोई गुंडे लोग थे, ट्रेन रुकाए, फिर अंदर चढ़ गए, और सुबह सुबह का टाइम तो सब सोए होते हैं, तो बोले कि एक एक को तलवार हाथ में थी, ऐसे रख देते थे, निकालो जो सोना चांदी पान पैसा आदि है निकालो। अब उस ट्रेन में बोले कोई बारात वाले जा रहे थे, तो उन लोगों के पास तो सोना होगा ही, उनको मालूम होगा, तो इसीलिए जो है वो ट्रेन रुकाई, और ट्रेन रुका करके सबको गले पर रख देते थे तलवार, और कहते तो क्या करते थे माताओं ने सब उतार करके, इतना शोर मचने लगा, चिल्लाने लगे, रोने लगे, कोई माताएं तो रोने लगे, लेकिन अभी तलवार को देख करके क्या करते, नहीं देते थे, जो ऐसे होते थे नहीं देते थे, तो वो चालू ट्रेन से बाहर फेंक देते थे उनको। तो कहा इसलिए सबने देना चालू किया, पूरा गठरी बांधी उन्होंने और मारते 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 ये बहन तक आ गए। सारे लोग बहन जी को कहने लगे, बहन जी अभी कुछ करो। अब वो तो योग में बैठी है, बाबा को याद कर रही है, एकदम पावरफुल स्वरूप में है, कंबाइंड हूं मैं शिव बाबा के साथ, कंबाइंड हूं मैं, बिंदु बाबा बिंदु, बस यही बोले के एक स्थिति मैंने अपनी बनाई। वो लूटते 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 मेरे कंपार्टमेंट तक आए, जब मेरे को देखा पता नहीं क्या उनको लाइट 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 नजर आया, वो पीछे हट गए। वहां से उस कंपार्टमेंट को क्रॉस करके वो सामने नहीं जा सके। जब सामने नहीं जा सके और वहां से ही रिटर्न होकर के फिर ट्रेन रुकी, वो उतर गए और जो है ट्रेन वापस चालू हो गई। बोले सारे जो कंपार्टमेंट वाले आगे के थे, सब लोग आप सचमुच देवी, आप भगवान को याद कर रहे थे ना, इसलिए हम लोगों का सब कुछ बच गया। तो परिस्थिति आई, परिस्थिति के समय क्या करना चाहिए, हाहाकार करने के बजाय क्या करो, बाबा की याद में बैठ जाओ। और इतना पावरफुल अपना स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप हो जाओ बाबा के साथ, बाप दादा और मैं। देखो बाबा आपके द्वारा क्या साक्षात्कार कराएगा मालूम नहीं, लेकिन वो वहां के बोले लाइट का ऐसा घेराव था, वो लाइट को क्रॉस करके सामने जा नहीं पाया, जा नहीं पाया। ऐसे अनेक इंसिडेंट आपको सुनने को मिलेंगे कि कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन उस परिस्थिति में अगर अपनी स्वस्थिति पावरफुल है तो कभी परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। हावी तभी होती है जब हम भीतर से कमजोर है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के साथ कंबाइंड रहो, और खास करके अमृत वेले कंबाइंड स्थिति का अनुभव करो। जब बाबा के साथ का कंबाइंड, तो आप खुद मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में आ जाएंगे, है ना। पांचवी बात, स्वस्थिति को पावरफुल बनाने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। आसक्ति नहीं हो उस वक्त, ये मेरा है, मेरा चाहिए, है ना। वो बहन ने मेरे को सुनाया, क्या एक एक घड़ी संकल्प मुझे आया, एक घड़ी संकल्प आया मुझे कि अगर वो लोग मांगेंगे तो मेरे पास तो बैज है और अंगूठी है, दो ही चीज है, और घड़ी है, मांगेंगे तो दे देंगे। लेकिन फिर अंदर में आया, वो मांगे भी क्यों मेरे से, क्यों मांगे, मैं अपने आप को इतना पावरफुल बना दूं। तो आसक्ति जहां होंगी वहां कमजोर पड़ेंगे, मेरा मेरा जहां आया वहां कमजोर पड़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो कमजोर नहीं पड़ेंगे, कुछ भी मेरा नहीं है, है ना। बाबा ने एक मुरली चलाई, मेहमान समझो इस जगत में अपने आप को, आए हैं कितने दिन के लिए पता नहीं, लेकिन जब हम मेहमान हैं तो मेरा कुछ है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति जितनी होगी उतना आप भीतर से दृढ़ होते जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे। जहां मैं और मेरा आया वो हमें अंदर से कमजोर करेगा, वो कमजोर करेगा। तो कमजोर नहीं होना है परिस्थिति के आगे, परिस्थिति के आगे अगर कमजोर हुए तो परिस्थिति एकदम क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, और फिर उसमें विजयी होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर अंदर से बेहद की वैराग्य वृत्ति है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है बाबा का है, यह इस दुनिया का है ना, तो जब मेरा कुछ नहीं तो डिटैचमेंट, न्यारे हो गए, और न्यारे हो गए तो पावरफुल हो गए। जब तक न्यारे नहीं होते ना तब तक पावरफुल नहीं बन सकते हैं। मुश्किल है पावरफुल बनना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति जिसके अंदर होगी वो राज ऋषि होगा। ऋषि भी होगा, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज भी होगा, और राज ऋषि बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला परिस्थिति क्या उसको कर सकेगी बताओ? कुछ कर सकती है? परिस्थिति कभी कुछ नहीं कर सकती है। परिस्थिति हावी नहीं हो सकती है। हमारा प्रभाव परिस्थिति के ऊपर पड़ेगा। वो परिस्थिति ऐसे छुमंतर हो जाएगी जो पता ही नहीं चला कि कभी थी भी। इसलिए बाबा कहते हैं आसक्ति न हो, है यूज करो, सेवा के लिए है यूज करो, लेकिन ये मेरा है ये नहीं हो, है ना। आज बाबा कहते हैं बच्चे ये साइंस के साधन तुम लोगों के लिए ही तो है बने हुए, तो यूज करो। यूज करने के लिए मना नहीं किया है बाबा ने, यूज करो, लेकिन मेरे पन की आसक्ति न हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी केयरलेस हो जाओ, केयरलेस भी नहीं होना है। बाबा का है, बाबा का, बाबा की अमानत है ये। बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है, अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बनाने के लिए दिया है। बस यूज करो डिटैच, यूज करो ध्यान रखो डिटैच, मेरा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए स्वस्थिति को इतना पावरफुल बना दो, ये 5-6 बातों के आधार पर आप देखो, फिर कोई भी परिस्थिति आपके पास आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए ये सब चीजों का भी। जब बहुत काल का अभ्यास होगा तब जाकर के अंतिम समय के समय में वो स्थिति आपको खींचेगी, वो स्थिति आपको सहज साक्षी बना देंगी, न्यारा प्यारा बना देंगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी और सहज ही डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज्ञान योग धारणा सेवा से अपने आप को एम्पावर कर लो। दूसरा ड्रिल करो, है ना। तीसरा स्वमान की शक्ति, चौथा कंबाइंड रूप में रहो, और पांचवा बेहद की वैराग्य वृत्ति, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
कब छाओ बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर धूप में, कभी छाओ बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ
अब शांति
बाबा को आरती दी उषा दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया आज का टॉपिक स्वास्थ्य से परिस्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त करना है उसके बारे में दीदी ने बहुत कुछ टिप्स हमको बताए हैं सर चार सब्जेक्टों में पावरफुल बनना है और ड्रिल करके शक्ति भी लेना है अर्थात दीदी ने बहुत कुछ समानों का महत्व तो बहुत कुछ बताया है दीदी ने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से अभी तब हमको समानों का मालूम है वैल्यू लेकिन आज बहुत कुछ उसका बारे में अभी दीदी ने बताते समय सचमुच समानों का मुहूर्त हम बन गए है ना तो समानों का कितना महत्व है वो भी दीदी ने हमको बताए है और कंबाइंड स्वरूप वो शक्ति स्वरूप कैसा बनना है और लास्ट बेहद का वारक बहुत कुछ टिप्स हमको दिया है उसका हम धारणा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को और उषा दीदी को हम शांति